पेस है 46वां सर्ग। एक महीना और निकल गया, मुकदमे के हाईकोर्ट में पेश होने की तिथि नियत हो गई। रमा के स्वभाव में फिर वही पहले की सी भीरुता और खुशामद आ गई है। अफसरों के इशारे पर नाचता है, शराब की मात्रा पहले से बढ़ गई है। विलासिता ने मानो पंजों में दबा लिया है। कभी कभी उसके कमरे में वैश्या जोहरा भी आ जाती है, जिसका गाना वह बड़े शौक से सुनता है। एक दिन उसने बड़ी हसरत के साथ जोहरा से कहा, मैं डरता हूँ कहीं तुमसे प्रेम न बढ़ जाए। उसका नतीजा इसके सिवा और क्या होगा कि रो रो कर जिंदगी काटूं, तुमसे वफा की उम्मीद क्या हो सकती है। जोहरा दिल में खुश होकर अपनी बड़ी बड़ी रतनारी आंखों से उसकी ओर ताकती हुई बोली, हाँ साहब हम वफा क्या जाने, आखिर वैश्या ही तो ठहरी, बेवफा वैश्या भी कहीं वफादार हो सकती है। रमा ने आपत्ति करके पूछा, क्या इसमें कोई शक है। जोहरा, नहीं जरा भी नहीं, आप लोग हमारे पास मोहब्बत से लबालब भरे दिल लेकर आते हैं पर हम उसकी जरा भी कदर नहीं करती, यही बात है ना। रमानाथ, बेशक। जोहरा, मुआफ़ कीजिएगा, आप मर्दों की तरफदारी कर रहे हैं, हक यह है कि वहाँ आप लोग दिल बहलाव के लिए जाते हैं, महज गम गलत करने के लिए, महज आनंद उठाने के लिए। जब आपको वफा की तलाश ही नहीं होती तो वह मिले क्यों कर। लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि हम में जितनी बेचारियाँ मर्दों की बेवफाई से निराश होकर अपना आराम चैन खो बैठती हैं, उनका पता अगर दुनिया को चले तो आंखें खुल जाए। ये हमारी भूल है कि तमाश बिनों से वफा चाहते हैं, चील के घोंसले में मांस ढूंढते हैं, पर प्यासा आदमी अंधे कुएं की तरफ दौड़े, मेरे ख्याल में उसका कोई कसूर नहीं। उस दिन रात को चलते वक्त जोहरा ने दरोगा को खुशखबरी दी, आज तो हजरत खूब मजे में आए, खुद ने चाहा तो दो चार दिन के बाद बीवी का नाम भी न लें। दरोगा ने खुश होकर कहा, इसलिए तो तुम्हें बुलाया था, मजा तो जब है कि बीवी यहाँ से चली जाए, फिर हमें कोई गम न रहेगा। मालूम होता है स्वराज्य वालों ने उस औरत को मिला लिया है, यह सब एक ही शैतान है। जोहरा की आमदो रफ्त बढ़ने लगी, यहाँ तक कि रमा खुद अपने चकमे में आ गया। उसने जोहरा से प्रेम जताकर अफसरों की नज़र में अपनी साख जमानी चाही थी, पर जैसे बच्चे खेल में रो पड़ते हैं वैसे ही उसका प्रेमानिभय प्रेमाभिनय भी प्रमोन्माद बन बैठा। जोहरा उसे वफा और मोहब्बत की देवी सी मालूम होती थी, वह जालपा किसी सुंदरी न सही, बातों में उससे कहीं चतुर, हाव भाव में कहीं कुशल, सम्मोहन कला में कहीं पटु थी। रमा के हृदय में नए नए मनसूबे पैदा होने लगे। एक दिन उसने जोहरा से कहा, जोहरा जुदाई का समय आ रहा है, दो चार दिन में मुझे यहाँ से चला जाना पड़ेगा, फिर तुम्हें क्यों मेरी याद आने लगी। जोहरा ने कहा, मैं तुम्हें न जाने दूंगी, यहीं कोई अच्छी सी नौकरी कर लेना, फिर हम तुम आराम से रहेंगे। रमा ने अनुरक्त होकर कहा, दिल से कहती हो जोहरा, देखो तुम्हें मेरे सिर की कसम, दगा मत देना। जोहरा, अगर यह खौफ हो तो निकाह पढ़ा लो, निकाह के नाम से चिढ़ो तो ब्याह कर लो, पंडितों को बुलाओ, अब इसके सिवा मैं अपनी मोहब्बत का और क्या सबूत दूं। रमा निष्कपट प्रेम का यह परिचय पाकर विह्वल हो उठा। जोहरा के मुंह से निकलकर इन शब्दों की सम्मोहन शक्ति कितनी बढ़ गई थी। यह कामिनी जिस पर बड़े बड़े रईस फिदा हैं, मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करने को तैयार है, जिस खान में औरों को बालू ही मिलता है, उसमें जिसे सोने के डले मिल जाएं, क्या वह परम भाग्यशाली नहीं है। रमा के मन में कई दिनों तक संग्राम होता रहा, जालपा के साथ उसका जीवन कितना निरस, कितना कठिन हो जाएगा, वह पग पग पर अपना धर्म और सत्य लेकर खड़ी हो जाएगी और उसका जीवन एक दीर्घ तपस्या, एक अस्थायी साधना बनकर रह जाएगा। सात्विक जीवन कभी उसका आदर्श नहीं रहा, साधारण मनुष्यों की भांति वह भी भोग विलास करना चाहता था। जालपा की ओर से हटकर उसका विलास सख्त मन प्रबल वेग से जोहरा की ओर खींचा, उसको व्रत धारणी वैश्याओं के उदाहरण याद आने लगे, उसके साथ ही चंचल वृत्ति की गृहिणियों की मिसालें भी आ पहुंची। उसने निश्चय किया, यह सब ढकोसला है, न कोई जन्म से निर्दोष है न कोई दोषी, यह सब परिस्थिति पर निर्भर है। जोहरा रोज आती और बंधन में एक गांठ और देकर जाती, ऐसी स्थिति में संयमी युवक का आसन भी डोल जाता। रमा तो विलासी था, अब तक वह केवल इसलिए इधर उधर न भटक सका था कि ज्यों ही उसके पंख निकले जालिए ने उसे अपने पिंजरे में बंद कर दिया। कुछ दिन पिंजरे से बाहर रहकर भी उसे उड़ने का साहस न हुआ। अब उसके सामने एक नवीन दृश्य था, वह छोटा सा कुल्हियों वाला पिंजरा नहीं बल्कि एक फूलों से लहराता हुआ बाग, जहाँ की कैद में स्वाधीनता का आनंद था, वह इस बाग में क्यों न क्रीड़ा का आनंद उठाए।